हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वस् त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। पंद्रह हमने कल चर्चा किया था। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, यानी हमेशा नहीं रहने वाला है। अभी तो हर क्षण चेंज भी हो रहा है, इस समय भी आप चेंज देख रहे हैं। किंडल में भी होगा, आप किंडल क्यों यूज करते हैं? ये रहा किंडल। किंतु सत आत्मा, सत मतलब शाश्वत रहने वाला आत्मा, अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो तत्वदर्शी नहीं है वह कि आत्मा का कोई अध्ययन नहीं करेंगे, केवल शरीर का अध्ययन और शरीर से प्राप्त होने वाले भोगों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे लोगों से सुनने से कोई लाभ नहीं है। उस किंडल में नहीं है प्रभु जी, उसमें नहीं। फोन में देखिए ना, फोन में आया होगा, फोन में सबके देख लीजिए। यस, गीता भूषण टीका। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के पांडित्य की भर्सना कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के पांडित्य की भर्सना कर रहे हैं क्योंकि उनका शोक अयुक्त था, क्योंकि वह शरीर के नाश के लिए दुखी हो रहे थे। अब यहां स्थापित किया जाएगा कि भगवान की सेवा के द्वारा ही शोक का विनाश हो सकता है, और यह उपासना जीव अर्थात उपासक और भगवान अर्थात उपास्य के भेद को समझने से ही होती है। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं समझता हूं बहुत आसान है, क्योंकि जब तक जीव ये समझता रहेगा कि वही भगवान है, वह भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भगवान ने 2.12 में बताया था, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात जीव में और भगवान में भेद है या नहीं है?
है।
और ये शाश्वत भेद है कि नहीं है? शाश्वत भेद है। और जीव लघु है, भगवान विभु है। तो इस प्रकार से ये सब अंतर समझ करके जीव भगवान की सेवा में लगता है और तब उसका माया का बंधन मुक्त हो जाता है। अतः भगवान ने जीव या फिर अंश या आश्रित या उपासक, ये सब जीव के गुण हैं। अंश, आश्रित या उपासक, ये कौन कौन है? ये सब जीव ही है, जीव के गुण हैं कि जीव ही भगवान का आश्रित है, जीव अंश है, जीव उपासक है, का वास्तविक भेद स्वयं से अर्थात अंशी या आश्रय या उपास्य से दिया था इस श्लोक में, अर्थात श्लोक नंबर 12 में। यहां तक बता रहे थे क्यों दिया था, क्योंकि जीव का शोक जब तक भगवान कृष्ण की वो सेवा नहीं करता है तब तक वो जाने वाला नहीं है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं, जैसे यदात्म तत्वे ना तू ब्रह्म तत्वम दीपोपमे नेह युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवम विमुच्यते सर्व पाशहि। तो ये कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति आत्म तत्व को, यदात्म तत्व तू, जब व्यक्ति जीवात्मा को समझता है तब वह ब्रह्म तत्व को समझ पाता है, परब्रह्म को समझ पाता है। और परब्रह्म कैसे हैं? अजम अर्थात अजन्मा है, ध्रुवम मतलब शाश्वत रहने वाले हैं, और विशुद्धम अर्थात विशुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है, और देवम वो सारे अलंकारों से युक्त है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव सब पाशों से मुक्त हो जाता है। जब एक योगी भगवान को अजन्मा, निर्विकार और शुद्ध स्वामी के रूप में जानता है, जो सभी अलंकारों से युक्त हैं, और इस प्रकार परब्रह्म का अनुभव करता है आत्मानुभव के द्वारा, जो कि एक दीपक के समान है, ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये श्वेता शतर उपनिषद का श्लोक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा, स्वयं की सही स्थिति को नहीं जानेगा, वह भगवान की स्थिति को ठीक से नहीं समझ सकता है। जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किया था, जो मायावादी हैं उनके सबसे, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसी अवस्था में प्राप्त कर लेना, ना तो यहाँ पे ज्ञाता है, ना ज्ञेय है और ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे? लेकिन आप जानते हैं कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान का धाम है, जीव है, भगवान है, वहां पे जीव भगवान की शाश्वत सेवा करेगा। तो अपने तत्व को ठीक से समझेगा तब वह भगवान को ठीक से समझ पाएगा। प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में कहा करते थे कि जैसे सागर की एक छोटी सी बूंद है, अगर आप उसका कह सकते हैं अध्ययन करते हैं तो आप सागर के बारे में कुछ कुछ समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से जीव के बारे में जब ठीक से समझते हैं तो भगवान के बारे में भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम सचेत हैं ऐसे भगवान भी सचेत हैं, जैसे हम शाश्वत हैं वैसे भगवान भी शाश्वत हैं, जैसे हम अजन्मा है, हमारा जन्म वास्तविक रूप से कभी नहीं होता, हम तो केवल अपने आप को शरीर मान लेते हैं, इसी प्रकार से भगवान अजन्मा है, लेकिन वह उनका शरीर और उनके शरीर उनमें कोई भेद नहीं होता। ये सब बातें सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे वाक्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जो व्यक्ति सचेतन अंश या जीव के स्वरूप को जानता है वह ही भगवान अर्थात सचेतन अंश के स्वरूप को जानने के योग्य हो पाता है। तो हमने क्या सीखा इस बात से कि जीव को अपने बारे में सीखना बहुत जरूरी है, तभी वह भगवान के बारे में ठीक ठीक समझ सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे किसी को भी आप कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो कृष्ण भगवान है ये बताने से पहले आप ये बताएंगे कि आप हैं कौन, और नहीं तो वो सोचेगा कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, तुम तो अपने भगवान की पूजा कर रहे हो। तो ना, फिर आप उसको ठीक से समझा नहीं सकते थे कि सनातन धर्म क्या है। तो आत्मा का तत्व समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान यहां नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूं, ऑब्वियसली एक हिंट दिया है कि मैं हूं तुमसे अलग हूं, लेकिन पहली चीज समझा रहे हैं कि हम लोग अविनाशी हैं। देखिए हमारे शोक का मूल कारण क्या है, हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं और शरीर संबंधित जो भी वस्तु है उनका नाश हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? मान लीजिए हम युवा रहना चाहते हैं तो क्या हमेशा युवा नहीं रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे तो शोक करेंगे। और इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हम बहुत आसक्त हो सकते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, जैसे कि मोबाइल फोन। अब आप जब मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कम से कम 10-15 साल तो मेरे साथ जरूर रहेगा, तो हो सकता है वह खराब ना हो, कोई चुरा के लेके जाए। आप एक एक चीज का अगर विश्लेषण करें, कोई ना कोई वस्तु जो हमारे साथ में रहती है वह कुछ देर के बाद छिन जाती है। तो अगर व्यक्ति अपने स्वरूप पे विचार करेगा तो व्यक्ति शोक नहीं करेगा। इसी कारण से पहले जीव के बारे में ज्ञान एक समान रूप से सभी सनिष्ठ भक्तों को दिया जा रहा है। सनिष्ठ मतलब जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है लेकिन वे भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो उनको वह ज्ञान दिया जा रहा है ताकि वह शोक से बाहर निकले और भगवान की पूजा में संलग्न हो। तो इस श्लोक और आने वाले श्लोकों में भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जिससे शरीर और आत्मा के भेद को समझा जा सके, ताकि यह समझावट शास्त्र के मध्य में अवरोध उत्पन्न न करे। क्यों अवरोध उत्पन्न करेगी? जब व्यक्ति शारीरिक चेतना से युक्त रहेगा तो भगवद्गीता की जो भी आगे बातें बताई जाएंगी उसमें कहीं ना कहीं यह समझावट परेशान करेगी। जैसे आप देख सकते थे वो कह रहे थे कि ये तो मेरे पूज्य हैं, वो मैं कैसे मारूंगा, धर्म का नाश होगा, ये वो। लेकिन धर्म की शुरुआत वास्तविक रूप से तब होती है जब व्यक्ति ये समझे कि वो आत्मा है। शारीरिक जो शरीर के धर्म है वे कभी भी आत्मा को सनातन लाभ प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो ये मिस्टेक, शरीर और आत्मा का भेद, ये शुरुआत में क्लियर हो जाए, जिसे कहते हैं ना कि 1+1 अगर 3 बता दिया तो पूरी मैथ्स में गड़बड़ होती रहेगी, सारे इक्वेशन सारे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए 1+1 2 होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आत्मा और शरीर का भेद ये सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान इस बात को बता रहे हैं। वैसे तो आप लोग सब समझते होंगे शरीर और आत्मा का भेद, और शरीर के स्तर से ऊपर ही होंगे मैं समझता हूँ, लेकिन आप फिर भी इसको सुने, ये बहुत आवश्यक है। जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि यह शरीर अर्थात असत, उसका परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता। जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि यह शरीर अर्थात असत, उसका परिवर्तनशील थोड़ा सा मिस्टेक हुई है अनुवाद में। जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि यह शरीर अर्थात असत, उसका परिवर्तनशील स्वभाव होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, अर्थात भाव। जो निर्विकार आत्मा है अर्थात सत, उसका परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता है, अर्थात अभाव। तो इस चीज को वो क्यों बोल रहे हैं? जो चीज नित्य परिवर्तनशील है उसके लिए शोक क्या करना? आपको याद आ रहा है ना, बुढ़ापे वाला एग्जाम्पल दिया था, जो आप बचपन से जवान होते थे ना शोक करते, आप जिस चीज को रोक ही नहीं सकते उसके लिए कोई शोक नहीं कर रहा है। और आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है तो इसलिए आत्मा के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थीम बार बार आएगी। शरीर का स्वभाव है परिवर्तनशील होना और आत्मा का स्वभाव है अपरिवर्तनशील होना, ये तो स्पष्ट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कल वाले उदाहरण को आप लोगों से जानना चाहता हूं। किसी को याद है कि मैंने कुछ बताया था आत्मा के अपरिवर्तनशीलता को हम व्यक्तिगत जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं? माइक पे बोलिए अगर याद है तो।
जैसे मैं वही व्यक्ति हूं, मुझे आज भी याद है, जैसे बचपन से हूं मैं, जैसे अगर मैं उनसे पूछूं तो उनको अभी भी याद है कि वो वही है, चेंज नहीं हुआ।
ऐसा कभी हम अनुभव नहीं करते कि हम परिवर्तन हुए हैं। बार बार हमें याद आता हमारे बचपन में हमने ये किया वो किया, लेकिन कभी भी पूरे जीवन में व्यक्ति को नहीं लगता कि वो परिवर्तित हुआ है, क्योंकि आत्मा जो अनुभव करने वाली है वो कभी परिवर्तित नहीं होती। और अपने शरीर के परिवर्तन को हर व्यक्ति देख रहा है, 15 दिन में तो हम शेव कराते ही हैं। यह सिद्धांत जो शरीर और आत्मा के बारे में है, अर्थात शरीर जिसे असत की संज्ञा दी गई है और आत्मा जिसे सत की संज्ञा दी गई है, उसको उसका साक्षात्कार उन लोगों को होता है जो दोनों के स्वभाव को जानते हैं, अर्थात तत्वदर्शी भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सिद्धांत में स्वीकार करते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो आत्मानुभूति के लिए उन कार्यों में लगते हैं जिससे आत्मा की अनुभूति हो, यानी कि तपस्या में लगते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी है। और अगर व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है तो वह केवल भोगों में लगेगा, और भोग में लगने से उसकी चेतना और दूषित हो जाएगी। तो इसलिए पहले सिद्धांत समझना जरूरी है कि मैं हूं कौन, और यह बहुत जरूरी है। जब हम समझेंगे कि हम हैं कौन, फिर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को मालूम चले कि वे बीमार है, तब ना वो दवा लेने के लिए प्रयास करेगा। अब बीमार हो और उसे मालूम नहीं हो तो दवा क्यों लेगा? हाँ, एक दिक्कत यह है कि सामान्य बीमारी में व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है तो सोचता है कि मैं बीमारी का इलाज कैसे कराऊं। लेकिन अगर व्यक्ति पागल हो तो क्या पागल व्यक्ति अपने दवा स्वयं करता है? क्या कोई व्यक्ति कभी बोलता है भाई साहब मैं पागल हूं मुझे दवा दीजिए? और इसे कई बार हम समझाया करते हैं प्रचार कार्य में, पागल व्यक्ति का एक सबसे मुख्य गुण क्या होता है? ओके, सबको पागल समझता है। माइक बताइए। यस,
पागल व्यक्ति हर व्यक्ति को पागल समझता है और अपने आप को बहुत अच्छा समझता है,
एक कारण। और मेन चीज अपनी पहचान भूल जाता है कि वो है कौन, और अपने आप को बिल्कुल ठीक मानता है। हम में से पूरा सारे लोग जी रहे हैं, बड़े मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं हूं कौन। और थोड़ा सा शांत मन से सोचिए कि आप हैं कौन, और आप देखेंगे कि आपकी इस शरीर से जो पहचान है उसको तोड़ना असंभव ही लगता है प्रायः। जब भी आप सोचेंगे आप कौन हैं, केशव आपको क्या याद आता है आप कौन हो, तो अपने इसी रूप का जो हमारा रूप भगवान ने दिया है उसी का स्मरण करते हैं। शायद सोचते होंगे कि भगवत धाम जाएंगे तो भी वैसे दिखेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। अच्छा चलिए, एक और एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए कि मान लीजिए पिछले जन्म का फोटो आपका जवानी का रख दिया जाए, इस जन्म का फोटो रख दिया जाए, उससे पहले वाले जन्म का रख दिया जाए, उससे आगे वाले जन्म का रख दिया जाए, भगवान ना करे आगे का जन्म हो, चलिए पीछे जाते हैं और बहुत सारे 100 जन्मों का फोटो आपके सामने रख दिया जाए, तब आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मैं हूं कौन इनमें से? हाँ, ये भी कह नहीं सकते कि हर जन्म में आदमी होंगे, बताइए कुत्ता हुए कि बिल्ली हुए है बड़ा। ये चीज मैंने कभी किसी को बोला नहीं, लेकिन ये है बहुत आश्चर्यजनक कि हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भगवान भुला देते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अपनी ही फोटो देख लीजिए जन्म में, छोटेपन की, फिर थोड़ा और बड़े की, फिर अभी और थोड़े बड़े की, फिर बुढ़ापे की, तो पूछा जाए कि कौन सी शरीर में तुम अपने आप को तुम हो, तो हर शरीर को हम बोलेंगे हम वही व्यक्ति है। तो भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली है, और ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक भगवान की हम सेवा नहीं करते हैं तब तक ये मोह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह मोह जो है ये माया के द्वारा हो रहा है। ये तो सिद्धांत श्रीमद भागवतम का है, तो इसलिए सीखना जरूरी है कि मैं कौन हूं। नाशवान अचेतन वस्तुएं जैसे कि यह शरीर असत कहलाता है, और अनाशवान आत्मा जो सचेतन है उसे सत कहा जाता है। इसी प्रकार का सिद्धांत विष्णु पुराण में उद्धृत किया गया है। ज्योतिषिम विष्णुर भुवनानि विष्णुर वनानि विष्णुर गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवरः. ये इंटरेस्टिंग है. हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, विष्णु ही ग्रह हैं, विष्णु ही जगत हैं, विष्णु ही वन हैं और दिशाएं हैं, वही नदी और समुद्र हैं, वही सब कुछ हैं, चाहे वह सचेतन हो या अचेतन. तो इसके श्लोक में आप देखेंगे यद अस्ति यद नास्ति. अस्ति मतलब जो सचेतन है, जो हम सब आत्मा है वह है, और नास्ति मतलब जो अचेतन है, जड़ पदार्थ है. तो वही विष्णु है, अर्थात वही सब कुछ जो है वह विष्णु की ही शक्ति है. यह विष्णु पुराण से बोला गया. तो यहां पर न अस्ति शब्द जड़ पदार्थ को इंगित कर रहा है और अस्ति शब्द सचेत जीवों को इंगित कर रहा है. इस तथ्य को इसी पुराण में आगे वाले श्लोक में कहा गया. एक चीज और है कि यहां पे पुष्ट कर रहे हैं कि सत मतलब आत्मा क्यों है और असत मतलब जड़ पदार्थ क्यों है. इस चीज को वो कोट कर रहे हैं. ये प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कोट करेंगे. वस्तु अस्ति किम कुत्रचित आदि मध्य पर्यंत हीनम सततैक रूपम. ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या कोई ऐसी वस्तु है कहीं पर जिसका न आदि हो न मध्य हो न अंत हो और जो सदा एक रूप में रहती हो. और वो कौन है समझ सकते हैं, वो भगवान विष्णु है. ठीक है. इसलिए नास्ति अर्थात जड़ पदार्थ और अस्ति अर्थात सचेतन जीव, जैसा कि विष्णु पुराण के श्लोक में पुष्ट होता है. तो ये अस्ति और नास्ति शब्द किसको रेफर करता है. अस्ति मतलब सचेतन जीव और नास्ति मतलब जड़ पदार्थ. ठीक है. एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें और भी है, वह थोड़ा सा टफ है, लास्ट सेक्शन है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान सत्कार्यवाद को स्थापित कर रहे हैं. देखिए कार्य का अर्थ होता है इफेक्ट, कार्य कारण. कार्य का अर्थ है इफेक्ट. जैसे कि ये हारमोनियम जो रखा है इसका कारण क्या है, लकड़ी. कार्य क्या है, हारमोनियम. तो कार्य को कहा जाता है इफेक्ट और उसका कारण हुआ. कारण मतलब हो गया कॉज. कॉज समझते हैं, कारण. कारण तो समझते ही हैं. तो उनके अनुसार क्या है कि कोई वस्तु अगर है तो उसका कारण भी उसमें निहित रहता है. मैं समझाता हूं उसका अर्थ क्या है, पहले पढ़ लेते हैं. भगवान सत्कार्यवाद को स्थापित करते हैं जो सांख्य दर्शनों का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कारण कार्य में निहित होता है. पर इसका अर्थ देख लीजिए. जैसे ये हारमोनियम है तो इस हारमोनियम का कारण है लकड़ी. लेकिन क्या इस हारमोनियम में लकड़ी है या नहीं है? है, ये बात वो कहते हैं. तो उनके हिसाब से ये जगत दिख रहा है यह है वास्तविक है. वास्तविक है मतलब हमेशा रहता है. और इस कारण से जो इसका कारण है वह भौतिक है, प्रकृति का कारण है. वो है ऐसा सत्य नहीं, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इसमें भगवान की जरूरत नहीं है. जबकि भागवतम का क्या सिद्धांत क्या है, भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है. लेकिन अचिंत्य शक्ति से भगवान से ये भौतिक जगत आता है. जन्मादि अस्य यतः इतरस चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट. समझ में आ रहा है. भागवत के सिद्धांत के अनुसार भगवान पूरी तरह चिन्मय है. भगवान का स्वरूप माया से इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है, इतर अलग है. लेकिन फिर भी भगवान की अचिंत्य शक्ति से यह भौतिक जगत भगवान से आया है. तो भागवत के सिद्धांत के अनुसार जिस सृष्टि का स्रोत है या जगत का स्रोत है वो कौन है, एक व्यक्ति है, चिन्मय सत्ता है उनकी, सचेतन व्यक्ति है. जैसे प्रभुपाद कहते हैं लाइफ कम फ्रॉम लाइफ. लेकिन इन लोगों के हिसाब से क्या है, प्रकृति शाश्वत है. प्रकृति ही प्रकृति के विभिन्न कार्यों को मतलब रिजल्ट, जितने भी आप उत्पादन देख रहे हो प्रकृति ही कर रही है. जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ होती है, वह अपने से क्रियान्वित नहीं हो सकती. लेकिन ये ऐसा वो कहते हैं. क्या कह रहे हैं, प्रकृति स्त्रीलिंग में है, बिना पुरुष की सहायता के नहीं हो सकता. लेकिन उनका कहने का अर्थ यह है कि ये हारमोनियम जैसा है तो हारमोनियम का कारण लकड़ी है. लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि लकड़ी के संग एक काष्ठकार भी है जो सचेतन है. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी, बहुत बड़ी मिस्टेक. और इस चीज को आप देख सकते हैं कि आजकल के साइंटिस्ट भी बोलते हैं सारा सृष्टि कैसे हुई, एक बम का विस्फोट हुआ. चलो मान भी लिया जाए कि बम का विस्फोट हुआ, तो ये पूछो कि विस्फोट किया किसने. तो ये चीज बड़ी अद्भुत है कि क्यों केवल प्रकृति को ही पकड़ते हैं. जैसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि एक न्याय कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, नहीं घटाकाश पटाकाश नहीं, ये जो आपका नहीं घटाकाश पटाकाश न्याय है, लेकिन वह जीवों के संबंध में वो लोग देते हैं मायावादी लोग. नहीं, एक एग्जांपल देते हैं उसका, चावल से निकलने वाले बिच्छू, तो क्या कहेगा कि बिच्छू का बच्चा अगर चावल के ढेर से निकल रहा है तो उसकी माँ कौन है? चावल का ढेर। लेकिन चावल का ढेर बिच्छू का माँ नहीं है, उसके अंदर बिच्छू है जिसने अंडे दिए, वह बिच्छू का कारण है। तो ये जो है गलत सिद्धांत है। तो
इसको गोविंद महाराज भी एक सिद्धांत देते हैं कि वो प्रकृति कहते हैं, तो कहते हैं कि किसकी प्रकृति?
यस, स्वभाव। प्रकृति मतलब स्वभाव, किसके द्वारा, कौन क्रियान्वित कर रहा
है? कोई तो प्रकृति होगा ना।
पता नहीं लोग इतने डल कैसे होते हैं, समझ में नहीं आता। ये एक आश्चर्य की चीज है। हाँ, योग माया समावृता, ठीक है, ओके। क्योंकि श्लोक का उद्देश्य, ओके, परंतु यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि श्लोक का उद्देश्य केवल आत्मा और शरीर के वास्तविक स्वभाव को ही स्थापित करना है उस व्यक्ति के लिए जो आत्मा और शरीर के संबंध में मोहित हो। किसी भी व्यक्ति के मोह को दूर करने के लिए यह चीज समझना बहुत जरूरी है। एक चीज आत्म तत्व समझने से बहुत हमारा लाभ होता है कि हम लोग शाश्वत हैं। ये जो माया और जीव का युद्ध हो रहा है, वीडियो गेम की तरह ले लीजिए, गेम की तरह ले लीजिए, एक गेम ओवर तभी होगा जब आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। हम चाहे कितना पिट जाएं, कितना भी गिरे, कितना पतन हो, कुछ भी हो, धम धम कुछ भी हो जाए, गेम ओवर तभी होगा जब आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बात है। तो कम से कम जितनी भक्ति हम रोज सहजता से कर सकते हैं उसको जरूर करते रहना चाहिए। अगर आपका 16 माला है तो 16 माला बढ़िया से करते रहिए, और आप हर नाम के संग, हर सेवा के संग भगवान के पास पहुंचते जा रहे हो। गिर रहे हो तो उसी रोड पे गिरते हो, उसी स्थान पे फिर आगे उठ करके फिर चलते हो, आगे पीछे नहीं जाते हैं। ये बहुत ज्यादा लाभकारी चीज है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कभी भी निरुत्साहित होकर के रुकना नहीं चाहिए। करते जाइए, एक दिन हम पार ही हो जाएंगे सीधे। हो सकता है वह ये इसी जिला में हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कभी भी व्यक्ति को मोहित नहीं होना, शोक आकुल नहीं होना चाहिए। लगे रहो भक्ति में, भक्ति में लगे ही रहो। ये गेम ओवर तभी होगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इससे यह स्थापित, हाँ, ये सत्कार्यवाद के अनुसार, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अनुसार कार्य कारण में निहित होता है, क्योंकि कोई वस्तु यदि सत यानी कार्य है यानी प्रकट रूप से फैक्ट है तो वह ऐसी वस्तु से प्रकट नहीं हो सकती जिसका अस्तित्व न हो। इससे यह स्थापित होता है कि प्रकृति ही एकमात्र ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का कारण है और इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये अजीब सी बात है, लेकिन ये इन लोग का सिद्धांत है। यहां ये श्लोक में से एक समानता है, जो असत है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। परंतु इस संदर्भ में यहां श्लोक अर्थ यह है कि जो असत है अर्थात शरीर, उसका कोई स्थायित्व नहीं है अर्थात न भावा। कहने का अर्थ है, इस श्लोक का सीधा अर्थ यह है, मतलब ये बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये इस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ये श्लोक का अर्थ नहीं है। श्लोक का सीधा अर्थ क्या है? आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है और शरीर की कभी स्थायित्व नहीं होता। ये सीधी सीधी बात हमें समझ में आना चाहिए। अब यही देखो, अगर इस श्लोक को आप इस सत्कार्यवाद के अनुसार समझने लग जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर सीधा सीधा समझेंगे कि हमें आत्मा शरीर में अंतर है, आत्मा स्थाई है, शरीर नाशवान है, तो समझ में आता है प्रैक्टिकली। और संदर्भ भी देखना चाहिए। आगे वाले श्लोकों में भगवान इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, सत्कार्यवाद की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा और शरीर के भेद को दिखा रहे हैं। ओके, पढ़िए, हमारे क्या नाम है, दशरथी प्रभु पढ़िए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य,
परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है।
ये बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट है। जब भी आप किसी को प्रचार करें कि इसी सिद्धांत के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आपका शरीर 7 साल में पूरा परिवर्तित हो जाता है। मोहन आपकी कितनी उम्र है अभी? अप्रोक्सीमेट 21। तो अब आपका शरीर 3 बार पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो अगर कोई कहे कि मैं केवल शरीर मात्र हूं, तो तुम कौन सा शरीर हो? पहले साल वाले, 7 साल वाले, 15 साल वाले या 21 साल वाले? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो वही मोहन हूं। अच्छा, आपकी मां मानती है कि आप वही मोहन है? मेरी मां भी वही मानती है कि मैं वही हूं। तो एक अद्भुत बात है कि संबंध जो है वे आत्मा से करते हैं, लेकिन पहचान जो है वह शरीर से करते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात, पढ़िए।
इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है।
मैं एक चीज बताना भूल गया, मान लीजिए कोई कहे कि मैंने ये मकान 7 साल पहले खरीदा, तो यानी कि जिस व्यक्ति ने मकान खरीदा वह तो परिवर्तित हो गया, तो अब वह अब ये आपका मकान नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मैं केवल शरीर हूं, तो यह फिलॉसफी कि मैं शरीर हूं ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। पढ़िए।
इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने
इससे एक चीज जरूर सीखने चाहिए कि हमें वास्तविक रूप से अगर हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो जाए, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये शरीर दुखदायी है, एक तो क्लियर है, और ये जाने वाला है कभी भी। तो कैसे हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग आत्मा के शाश्वत लाभ के लिए कर लें, ये बात हमको समझ में आ जाए तो बड़ी जल्दी वैराग्य हो जाए। जितना हमारा इस शरीर से काम बनता हो, सीधी सीधी बात कहें, जैसे महाराज बता रहे थे कि ये संबंध में सचिनंदन महाराज समझा रहे थे कि असुर और देवताओं के बीच में संधि हुई थी, तो देवताओं ने केवल अपना काम साधने के लिए संधि करी थी। ऐसे ही अपना काम साधने के लिए शरीर, काम चलाने के लिए शरीर है, और अन्यथा ये शरीर केवल दुख देने के लिए। आपको लगे शरीर में और कोई कष्ट नहीं, तो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये परेशान करते रहते हैं, बाहर के लोग परेशान नहीं करते, नहीं। तो कैसे हम इस शरीर का उपयोग भगवत प्राप्ति के कर ले, इसके लिए व्यक्ति को बुद्धि लगानी चाहिए, और किसी चीज के लिए नहीं। इस जगत में हम कुछ प्राप्त करने के लिए बने नहीं है। पढ़िए।
तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं।
प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं, ज्योतिषिम विष्णु भुवनानि विष्णु, ये भी हमने पढ़ लिया था।
सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना
है। समझ में आ रहा है, सत मतलब शाश्वत आत्मा, असत मतलब नाशवान जड़ पदार्थ। यस,
यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होती है।
होता है, थोड़ा मिस्टेक है।
अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है।
आप देखेंगे इस टीका में शुरुआत में है यही बात बोली गई थी कि जब तक जीव भगवान से अपने भेद को और संबंध को नहीं देखता है, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है।
ये भी हमने सीखा था कि आत्मा जब अपने आप को समझता है तो आत्मानुभव होता है उसको, तो उसके द्वारा वह भगवान को समझ पाता है। यस,
आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पुण्य के अंतर के रूप में है।
जैसे आप समझते हो एक बहुत बड़ी विशाल अग्नि और उससे निकलने वाली छोटी सी चिंगारी। यस,
वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्धवों प्रकाश का मूल माना गया है।
अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी अब उसको भी काट रहे हैं, उस पॉइंट को जो पॉइंट था सत्कार्यवाद, जिसमें कहते हैं कि प्रकृति मूल है, उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि नहीं, चीज सही नहीं है, भगवान मूल है। आप समझ पा रहे हो, अभी हमने पढ़ा था ना कि वो कह रहे हैं प्रकृति मूल है, प्रकृति मूल नहीं है। प्रभुपाद जी ने भले ही वो सत्कार्यवाद न रखा हो, लेकिन उसको सीधे क्लियर कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र भागवत के अनुसार जीव और प्रकृति दोनों का स्रोत भगवान कृष्ण है। यस,
ऐसे अद्भुताओं का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति।
अद्भुताओं का क्या होता है, ये शब्द सही नहीं है, उद्भवों का। ठीक है,
उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है।
हाँ, थोड़ा समझिए, ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भौतिक जगत के रूप में और जीवों के रूप में भगवान से मुख्यतः अगर इस जगत में देखा जाए दो शक्तियां निकल रही हैं, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति या जीव शक्ति। तो इनका अनुभव हम कर रहे हैं, जिसको भगवान ने गीता में बोल रहा है, ययेदम धार्यते जगत अपर्ये मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। जैसे इस रूम में पंखा है, लाइट है, लैपटॉप है, सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन इसका उपयोग कौन कर रहा है, इसका उपयोग हम जीव लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस रूम में दो वस्तुएं, एक जड़ पदार्थ है और जीव है, इसको यहाँ पे बता रहे हैं। जो ये दोनों भगवान से आए हैं, उनका अनुभव इस जगत में किया जा सकता है। यस,
जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि सातवें अध्याय में स्पष्ट होगा।
इसको मैंने भी समझाया था। यस।
यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण।
थोड़ा समझ लीजिए, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, क्या आप सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग कर सकते हैं?
नहीं,
नहीं। लेकिन सूर्य की रोशनी क्या सूर्य पे आधारित है?
नहीं, आधारित है, लेकिन अंतर है
ना। हाँ, आधारित है। सूर्य की रोशनी सूर्य पे आधारित है, लेकिन आप सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग नहीं कर सकते। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, एक दृष्टि से सूर्य है, सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन वह सूर्य भी नहीं है, ये बात बताई जा रही है। यस।
अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानतावश में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है।
एक बहुत सूक्ष्म बात है, देखिए, जीव हमेशा कृष्ण का दास रहता है। केवल माया एक भ्रम उत्पन्न कर रही है कि इस समय मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो उत्तम अधिकारी हैं, वह देखते हैं कि कैसे हर जीव बद्धावस्था में भी कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, केवल वह समझ नहीं पा रहा है कि वह कृष्ण की सेवा कर रहा है।
चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि देवताओं की भी जो पूजा करते हैं वो अविद्या पूर्वक मेरे ही
अभी भी, हाँ, गलत तरह से पूजा करते हैं, अविधि से पूजा करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जैसे ज्ञान नष्ट होगा, सिंपल सी बात है, जैसे आप सूर्य की रोशनी को कभी भी सूर्य से अलग नहीं कर सकते, ऐसे जीव कभी भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। तो ये चीज जो है समझना चाहिए। और जैसे जैसे अज्ञान नष्ट होगा, वैसे वैसे अपना जो हमारा अस्तित्व है, कैसे भगवान पर निर्भर है, वह और समझ में आता है। तो जीव स्वाभाविक रूप से भगवान को ही समर्पित होता है। पढ़िए।
अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भागवत गीता का उपदेश देते हैं।
हम अगले श्लोक को अभी नहीं ले रहे हैं। हमने आज इस श्लोक में क्या सीखा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने श्लोक में सीखा था कि जो शरीर है वह नाशवान है, आत्मा कभी नाशवान नहीं है। दूसरा, अस्थि और नास्ति शब्द से भी हमने सीखा था, सत मतलब शरीर नहीं, सत मतलब आत्मा शाश्वत, असत मतलब जड़ पदार्थ जो नाशवान है। और क्योंकि नाशवान अवश्यम भावी है, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्योंकि नाशवान नहीं है, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए शोक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हमने ये भी सीखा कि जीव, ये शोक तभी नष्ट होगा जब जीव भगवान की उपासना करेगा। और इसके लिए जीव और भगवान का भेद ना बहुत जरूरी है। और जीव की ऐसी अवस्था जिसमें, जो तथाकथित ब्रह्मवादी बोलते हैं, जिसमें वह नहीं, उसमें वो बोलेगा कि ना ज्ञान है, ना ज्ञेय है, ना ज्ञाता, ये संभव नहीं है, क्योंकि अविनाशी है वो, आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे। और हमने सीखा कि प्रकृति का कारण भी भगवान है। प्रकृति अपने आप में अन्य उत्पादनों को प्रस्तुत नहीं कर सकती है, प्रकृति का कारण भगवान है और जीव का कारण भी भगवान है। और अब आगे, और जीव और उसके पदार्थ का भेद बताने के द्वारा हमारा मोह नष्ट होता है, इसकी चर्चा हम लोग आके और करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।